इस वक्त आप जो रूपरवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और क्लीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।
हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे बच्चे और तेरी बच्चियां आज एक बार फिर तेरी सलामती में और तेरे फजल में तेरे आगे झुक जाते हैं और हम सब तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ही इज्जत, ताजीम, तमजीद और बुजुर्गी के लायक है। तेरा नाम एक बार फिर से हमारे दरमियान सरबुलंद हो, तेरे वादे हमारी जिंदगियों में पूरे हों और तेरी डेस्टिनीज और असाइनमेंट्स जो हमारी जिंदगियों के लिए हैं, हम उन्हें कम्प्लिश कर सकें और करते चले जाएं। रोज बरोज हमारी मदद कर, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हमारी आज की जो स्टडी है आमदेसानी के ताल्लुक से, उसका जो टॉपिक है वो है द मार्क ऑफ द बीस्ट, हैवान का अदद। सो हम जाएंगे मुकाशवा 13 बाब में, और जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि जो मुकाशवा की किताब है ये ऑलमोस्ट ट्रिबुलेशन के पीरियड को कवर करती है, जो 7 सालों का दौर है। इससे ज्यादा इसमें मटेरियल मौजूद नहीं है। कुछ जो आखिर के चैप्टर्स हैं वो हमें अब्दियत में ले जाते हैं, लेकिन जो सारा फोकस है मुकाशवे की किताब का वो एंटी क्राइस्ट का पीरियड है और ट्रिबुलेशन का पीरियड है। सो ये क्वेश्चन चर्च में हर दौर में रहा कि ये जो हैवान का अदद है ये क्या चीज है, 666 क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ स्टडीज में हम इसे कवर कर सकें, ताकि इसकी जो एक बेसिक स्पिरिट है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो थोड़ा सा हमें इसकी बैकग्राउंड को भी समझने की जरूरत है और इसकी एप्लीकेशन को भी। लेकिन इस एंड टाइम लीडरशिप के ताल्लुक से 4-5 टर्म्स अपने आप जहन में रखें। नंबर 1, जो वर्ड यहां पे यूज किया गया है, हैवान, बीस्ट, मुखालफे मसीह के लिए जो टर्म यहां पे यूज की गई है मुकाशवा 13 बाब में, वो क्या है? हैवान, इंग्लिश में बीस्ट। दूसरी जो टर्म है वो है हैवान का बुत, द इमेज ऑफ द बीस्ट। तीसरा जो इसमें हमें चीज नजर आती है वो है द मार्क ऑफ द बीस्ट, हैवान का अदद। चौथी जो चीज नजर आती है हमें इसमें वो है फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी। और पांचवी जो चीज हमें नजर आती है इस एंड टाइम फेज में वो है अ वुमन राइड्स अ बीस्ट, एक औरत जो हैवान पर बैठी है या सवार है। मुकाशवा 19 बाब में हम इसके ताल्लुक से कुछ देख सकते हैं। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है उस एंड टाइम ईयर्स की जिसमें मुखालफे मसीह ने जाहिर होना है। सो मुखालफे मसीह क्यों जाहिर होगा, उसने आना ही क्यों है, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों आना चाहता है? और जब मुसीबतों का दौर शुरू होगा जिसे हम ट्रिबुलेशन कहते हैं और जिसके मिड में जाके 3.5 सालों के बाद जिसे हम ग्रेट ट्रिबुलेशन कहते हैं, उसका सबब क्या है, वजह क्या है, मकसद क्या है? सो द पॉइंट इज मुखालफे मसीह इसलिए आना चाहता है, ही वॉन्ट टू रूल, ही वॉन्ट्स टू बी अ गॉड। वो चाहता है कि वो क्या बने, खुदा बने, खुदा की जगह ले। और सेकेंडली ही वॉन्ट्स टू बी वर्शिप्ड एंड ही वॉन्ट्स टू रूल द अर्थ, वो दुनिया पे हुक्मरानी करना चाहता है और हमेशा तारीख के हर दौर में हर इंसान के सामने ये क्वेश्चन आता है जिसका उसने जवाब देना है, फैसला करना है शख्सी तौर पर अपने लिए कि आपकी जिंदगी में कौन बादशाह है, हु इज द रूलर ऑफ योर लाइफ। हालात, परेशानियां, फिक्रें, दुनिया, एंटी क्राइस्ट या जीसस क्राइस्ट, चाहे हम इस फैसले को इग्नोर करें या हम इसको सीरियसली लें, लेकिन हर शख्स इस अपने लाइफ के किसी ना किसी दौर में, बचपन में, नौजवानी में, बुढ़ापे में, लाइफ की किसी ना किसी फेज में, उसके लिए लाजम है कि वो इस सवाल को एड्रेस करे और अपने लिए ये फैसला करे, हु इज गोइंग टू रूल माय लाइफ। मैं खुद, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, हालात, परेशानियां, फलां चीजें या खुदावन यीशु मसीह। सो आपने भी अपनी जिंदगी के लिए ये फैसला करना है कि मेरी जिंदगी का बादशाह कौन है। सो पूरी इंसानियत दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जो एक पार्ट वो है जो ये फैसला करती है कि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों का मालिक है, और दूसरा सेगमेंट लोगों का या इंसानों का वो है जो ये फैसला करता है कि कोई और हमारी जिंदगियों का मालिक है। लेकिन जब दुनिया ट्रिबुलेशन में जाएगी, मुसीबतों के दौर में जाएगी और मुखालफ मसीह जाहिर होगा, तो ये जो सवाल है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर लेगा। उस वक्त, आज भी ये फैसला इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त, उस दौर में इसके लिए बहुत बड़ी जो कीमत और कुर्बानी है वो देनी पड़ेगी। और उस वक्त जो क्वेश्चन होगा वो भी यही होगा, क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट, किसका आपने इंतखाब करना है, मसीह या मुखालफे मसीह। हाँ, पुराने दौर में भी हम ये देखते हैं, जोशुआ कहता है मैं और मेरा खानदान खुदा की इबादत करेंगे, तुम अपने लिए डिसीजन कर लो, फैसला कर लो तुम किस खुदा को सर्व करोगे। सो आज भी आपने देखना है अपनी जिंदगी में, हु रूल्स माई लाइफ, हु इज द किंग ऑफ माई लाइफ एंड हु इज द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट। आज भी मुखालफ मसीह की जो रूह है या तासीर है वो जिंदगियों में अपना काम करते हैं। बाइबल की तालीम के मुताबिक जिनकी जिंदगियों में यीशु मसीह बादशाह है वो कहां पे जाएंगे, आसमान पे जाएंगे, और जिनकी जिंदगियों में मुखालफ मसीह यानी मसीह बादशाह नहीं है, मसीह निजात दहिंदा नहीं है, वो कहां पे जाएंगे, गुनहगारों का एंड क्या है, कहां पे जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, दोजख में जाएंगे, ऐसे ही है। नो, हेल इज नॉट द एंड, जहन्नम आखिरी सजा नहीं है, जहन्नम आखिरी चीज नहीं है, जहन्नम वेटिंग की जगह है जहां पे इस वक्त गुनहगार जो हैं अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, कल को कोई आपसे ये ना पूछे जी आपके पास्टर साहब कौन है जिन्होंने आपको ये नहीं बताया कि जहन्नम आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है गुनाहगारों की, बल्कि कौन सी है, आग की झील, द लेक ऑफ फायर, वो एंड है जहां पे गुनाहगार भी फेंके जाएंगे, मौत भी फेंकी जाएगी और जहन्नम भी वहां पे फेंका जाएगा, उसमें डाला जाएगा, और जो गिरे हुए फरिश्ते हैं वो भी कहां पे डाले जाएंगे, द लेक ऑफ फायर। तो इस वक्त जो गहना है जिसे जहन्नम कहते हैं बाइबल स्कॉलर्स के मुताबिक वो कहां पे है, जमीन के नीचे है, एंड इन द फाइनल जजमेंट जब गुनाहगारों की अदालत होगी तो जहन्नम को भी उठा के, हर चीज को उठा के कहां फेंक दिया जाएगा, इन द लेक ऑफ फायर। स्वयं पढ़े मुकाशवा 13 बाब और उसकी 15 आयत पढ़ेंगे।
और उसे उस हैवान के बुत में रू फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए।
12वीं आयत।
और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था जिसका जख्मे कारी अच्छा हो गया था।
सो इसमें हम तीन चीजें देखते हैं, पहला हैवान मुखालफ मसीह, दूसरा हैवान झूठा नबी, और जो 15वीं आयत में हम तीसरी बात देखते हैं वो क्या है, हैवान का बुत। अब ये मुखालफ मसीह और झूठा नबी जैसे टर्म ये बाइबल में दी गई मुकाशवा किताब में, ये दोनों मिलकर एक टीम वर्क के तौर पे कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करेंगे। और ये जो झूठा नबी है इसके बारे में लिखा है 15वीं आयत में, और उसे उस हैवान के बुत में रू फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी करवाए। सो इस फॉल्स प्रॉफिट के पास जो ट्रिबुलेशन के पीरियड में जाहिर होगा, ये अथॉरिटी दी गई कि वो जो बुत है वान का, अब ये बुत पता नहीं क्या चीज है, इसको हम लेटर ऑन नेक्स्ट स्टडी में देखेंगे, तो वो बोले, कम्युनिकेशन, बोलने का मतलब है कम्युनिकेशन, द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, आईटी टेक्नोलॉजी या किसी और टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन, और जितने लोग उस हैवान के बुत की वर्शिप ना करें उनको भी क्या करें, कत्ल करवा दें। सो ये दो पावर्स या अथॉरिटी हम उस फॉल्स प्रॉफिट के पास देखते हैं कि वो जो पहला हैवान है उसकी हुकूमत को, उसकी वर्शिप को इस्टेब्लिश करने का, मनवाने का जो इख्तियार या काम या असाइनमेंट है वो उसको दी गई है, और जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे उनका रिजल्ट क्या होगा, उनको कत्ल भी करवाए, उनको कत्ल भी करवाए, जैसे मूसा के दौर में फिराउन ने किया या मसीह के दौर में हेरोदीस ने किया। वही सिनेरियो एक बार फिर से रिपीट होगा और एक बड़े स्केल पे, वर्ल्ड वाइड स्केल पे, ये जो फॉल्स प्रॉफिट है और उसके साथ जो भी पावर्स होंगी या इख्तियारात या मींस उसके पास अवेलेबल होंगे, वो क्या करेंगे उसके साथ, जो उसकी वर्शिप नहीं करेगा बुद्ध की उसको कत्ल करवाएंगे। सो ट्रिबुलेशन का पीरियड, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट किलिंग पीरियड, डेली डेली लाखों हजारों लोग कत्ल किए जाएंगे जो उसकी वर्शिप नहीं करेगा, जो उसका आदत नहीं लेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इट विल बी अ ग्रेट किलिंग मूवमेंट। इसी स्पिरिट को हम हेरोदीस में देखते हैं, इसी स्पिरिट को हम हिटलर में भी देखते हैं, जो उनकी बात नहीं मान रहा, जो उनकी पॉलिसी नहीं मान रहा, जो उनके अगेंस्ट है, जो उनके मुखालिफ है, उसे क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। 50 साल पहले, मे बी 60 साल पहले शायद ये बातें थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन अब ये चीजें और ज्यादा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है इंसान की बेहतरी के लिए, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है इंसान को बर्बाद करने के लिए भी। और 5-10 सालों में ये टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मुश्किल नहीं रह जाएगा कि जो मुखालफ मसीह या झूठा नबी करना चाहता है वो कर सके। सो इससे पहले कि हम फर्दर आगे जाएं, लेट्स रीड वर्ड 16, 17 एंड 18, 16, 17 और 18 आयत हम पढ़ेंगे।
और उसने सब
چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔
آمین۔ سو ابھی آپ سب ان ورسز سے واقف ہیں، آپ نے پہلے بھی بہت کچھ اس کے تعلق سے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، لیکن آج پھر وقت ہوگا کہ ہم ان باتوں کو ریوائز کر لیں۔ سو وہ کیسے اس حیوان کے بت کی اور حیوان کی ورشپ کرائے گا، 16 آیت میں، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ، رائٹ ہینڈ، ناٹ آن دی لیفٹ ہینڈ بٹ آن دا رائٹ ہینڈ، اور یا ان کے ماتھے پر، آپشن ہے، رائٹ ہینڈ ہے یا فور ہیڈ ہے، پر ایک ایک چھاپ کرا دی، نشان یا چھاپ۔ اور یہاں جو لفظ چھاپ ہے، انگلش کی بائبل میں اس کے لیے لفظ سائن یہاں پہ یوز ہوا ہے، سائن آف دا بیسٹ، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے عدد، اس کے نام کا عدد ہو، کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے۔ وہ سارے سسٹم کو کیسے ریگولیٹ کریں گے ورشپ کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے، کیا ٹیکنالوجی یا سسٹم ڈیوائز کریں گے، اور وہ ہے کہ نشان، سٹیگما، ایک چھاپ، ایک نشان، کہاں پر؟ رائٹ ہینڈ پہ اور ماتھے پہ۔ آج جب آپ کے لیے نوٹس اویلیبل کیے ہیں، جب آپ یہ نوٹس لیں گے تو یہ امیج آپ کو ایک اس میں ملے گی کہ ایسے ہاتھوں میں یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی گئی ہے کہ ایک سرجری کے ساتھ ایک چپ یا ایک نشان یا ایک کوئی بھی بائیو ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی چیز ہے وہ پلانٹ کی جا سکے۔ اور اگر مجھے اور اس طرح سے بعد میں لگائے جانے کے بعد جو ہاتھ پہ وہ چیز نظر آئے گی وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے، ہوگی، اور یہ آلریڈی ہو رہا ہے، یعنی کہ اس نے ہونا ہے لیکن ڈفرنٹ پرپزز کے لیے یہ آلریڈی ہو رہا ہے۔ سو سم ٹائمز ہم یہ سوچتے ہیں بڑا مشکل ہے، دنیا کی آبادی اتنی زیادہ ہے، وہ کہاں کہاں لوگوں کو پکڑیں گے، کہاں کہاں نشان لگائیں گے، اور یہ ایک بہت لمبا اور ایک بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے۔ لیکن اگر ہم اس دور کو بڑے غور سے دیکھیں تو یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ہم مکاشف کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور چھٹے چیپٹرز پہ ہم موو کرتے ہیں اور ہم ججمنٹس کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پہلی ججمنٹس میں دنیا کی 1/3 جو آبادی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ سو اگر اس وقت مثال کے طور پر فرض کریں کہ دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، تو اس میں سے 1/3 لوگ اگر پہلی مصیبتوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں تو تقریباً 5.5 ارب کے قریب، آگے پیچھے پلس مائنس، ان کی آبادی جو ہے وہ رہ جائے گی۔ اور جو مکاشفے کی کتاب میں ہم لیٹر ججمنٹس کو دیکھتے ہیں، غضب کے پیالے جہاں پر انڈیلے جاتے ہیں، تو 2/3 جو پاپولیشن ہے دنیا کی وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے۔ تو جب 5.5 ارب میں سے 2/3 پھر جب ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، تو جب آپ کیلکولیشنز کریں گے تو سم ویئر دنیا کی آبادی جو ہے وہ بالکل سکویز ہو کر 2 ارب کے آگے پیچھے رہ جاتی ہے۔ سو 2 ارب لوگوں کو اس ٹائم پیریڈ میں کنٹرول کرنا یا مجبور کرنا یا ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنا وہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں رہ جائے گا۔ سو دنیا کی جو اس وقت کی حالت آپ کے سامنے ہوگی، there will be lot of chaos and confusion. کوئی ادھر مصیبتیں آ رہی ہیں, کوئی ادھر طوفان آ رہا ہے, کوئی ادھر زلزلہ آ گیا ہے, ادھر سیلاب آ گیا ہے, 5 لاکھ ادھر مر گئے ہیں, 6 لاکھ اس ملک میں مر گئے ہیں, فلان چیز ہو گئی ہے. What will be there? Lot of chaos and confusion. کیونکہ لکھا ہے اخیر زمانے میں برے دن ہوں گے. زلزلے آئے, طوفان آئے, جیسے پاکستان میں سیلاب آیا, تو ہماری حکومتیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان میں سے لوگوں کو نکال سکیں. اس طرح سے بہت سے جو ملک ہیں وہ ایک بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہوں گے. اور اس وقت جو بھی کوئی ایسی رولنگ اتھارٹی سامنے آئے گی, جو جس کے لیے کنٹرول کرنا ایزی ہوگا, جس کے پاس پیسے کی پاور ہوگی, ملٹری فورس ہوگی اور نیوکلیئر اویلیبلٹی ہوگی, اس کے لیے اس وقت قوموں کو کنٹرول کرنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. ایک طرف سے تصویر یہ ہوگی کہ ایک طرف سے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ چند سالوں کے اندر اندر, اور یہ سارے واقعات کوئی 50 سال کے بعد نہیں ہونے, آپ کی زندگی میں ہو جانے, آپ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے. یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی کہ میرا آنا ہوگا. ایک طرف ڈیزاسٹرز ہوں گے, لوگ ڈیلی مرتے جا رہے ہیں, دنیا کی آبادی میں بھی 2 ارب یا 2.5 ارب تک سکویز کر گئی ہے. زلزلے, قحط, بیماریاں, وائرس اور ایسی بے شمار چیزیں لوگوں کو ہلاک کرتی چلی جائیں گی. اور دوسری طرف مخالف مسیح, اس کے ایجنٹس جو چھاپ نہیں لیں گے اور جو اس حیوان کی ورشپ نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ ان کو قتل کریں گے. مزید دنیا کی آبادی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. سو ایک ایسا کنفیوژن کا, کیاوس کا, بد امنی کا, ڈیپرائیویشن کا دور ہوگا کہ انسان یہ کوشش کرے گا کہ جہاں سے بھی اسے کوئی ہیلپ مل سکتی ہے, کھانے پینے کے لیے مل سکتا ہے. حکومتیں اس طرف فوکس کریں گی, کہیں سے بھی ہمیں ایڈ مل سکتی ہے, مدد مل سکتی ہے, وہ اس کے ایجنڈا کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے. چاہے وہ ون ورلڈ ایجنڈا ہے, چاہے وہ ون ریلیجن کا ایجنڈا ہوگا, چاہے وہ ون کرنسی کا ایجنڈا ہوگا, یا ون گاڈ کا, یا ون ورشپ کا. اس وقت ان کا جو فوکس ہوگا وہ سروائیول ہوگا, کہ اس دور میں سے, اس مصیبت میں سے ہم بچ جائیں یا ہم نکل جائیں. 16ویں آیت پڑھیں گے.
اور اس نے سب چھوٹے بڑوں, دولت مندوں اور غریبوں, آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی.
Now this 16th word is very interesting. اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے, اور جب ہم اس ورڈز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں 3 کیٹیگریز نظر آتی ہیں. 3 قسم کے لوگوں پر وہ چھاپ یا وہ نشان یا وہ سٹگما لگائے جاتے ہیں. نمبر 1, چھوٹے بڑے, all civil ranks. نمبر 2, دولت مند اور غریبوں کو, all wealth ranks. لوگ جس بھی دولت کے جس بھی رینک میں آتے ہیں, امیر ہیں یا غریب ہیں, اس سے فرق نہیں پڑ رہا. اس کا ٹارگٹ یہ نہیں کہ صرف دولت مند ہوں یا صرف غریب ہوں یا درمیانے طبقے کے لوگ ہوں, بٹ ایوری بڈی. اس نے سب, جب ورڈ سب یہاں پہ آ گیا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو اس کی اپروچ ہوگی وہ یونیورسل اپروچ ہوگی. چھوٹے اور بڑے, آل سیوک رینکس, دولت مند اور غریب, اور آل ویلتھ رینکس, آزادوں اور غلاموں کے دائنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی. تیسرا گروپ کیا ہے؟ غلاموں, آزادوں اور غلاموں. دس مینس ایوری کائنڈ آف کلچرل کیٹیگریز. کوئی بھی کلچر ہے, کسی بھی کلچر کے لوگ ہیں, کسی بھی ویلتھ اسٹیٹس کے لوگ ہیں, کسی بھی رینک کے, کام کرنے کے تعلق سے کسی بھی رینک کے لوگ ہیں, اس کا ایک ہی فارمولہ ہے اور اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اور وہ کیا ہے؟ بیسٹ کی, حیوان کی ورشپ کریں. حیوان کون ہے؟ مخالف مسیح. और ये इतना क्रिटिकल टाइम होगा और ये इतना मुसीबत का दौर होगा, मुकदसों को इसके लिए बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि जो उस छाप को नहीं लगवाएगा वो उनको क्या करेगा, कत्ल करवा दे, इज गोइंग टू किल देम। और गर्चे उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि अपने हाथ जो है वो सब पे डाल सके, सब मुकदसों पे, क्योंकि लिखा है कि बरगजीदों की खातिर वो दिन कटाए जाएंगे, अगर कटाए ना जाते तो जमीन पर कोई आदमी कोई बशर ना बचता। अच्छा, इससे ये एक और भी आपने पॉइंट ज़ेहन में रखना है, क्योंकि जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है वो पोस्ट ट्रिबुलेशन है, यानी कलीसिया मुसीबतों के दौर में से गुजरेगी, और अगर प्री ट्रिबुलेशनिस्ट हैं कि कलीसिया मुसीबतों के दौर में से नहीं गुजरेगी और वो पहले ही उठा ली जाएगी, तो फिर यहां पे छाप लेने का मसला ना होता। जब नीचे चर्च ही नहीं है, जब नीचे कलीसिया ही नहीं है, ईमानदार नहीं है, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कौन छाप लेता या नहीं लेता। लेकिन मुकाशवी किताब में भी बहुत से पैसेजेस पढ़ेंगे जब मुखालफ मसीह के दौर में ईमानदार कलीसिया मुकदसीन आपको जमीन पर नजर आते हैं। और ये हिस्ट्री में पहली दफा नहीं हुआ, बहुत से अदवार में ये जो निशान लगाने का एलिमेंट है या स्टैम्प करने का या स्टिग्मा करने का, ये हमें हिस्ट्री में बहुत दफा ये नजर आता है। एबार की किताब में बताया गया कि वो लोग जो अनक्लीन हो जाते थे उनको सेरेमोनियली अनक्लीन करार देने के लिए उन पे एक निशान लगाया जाता, स्पेशली वो लोग जो कोढ़ का शिकार हो जाते थे, कोढ़ की बीमारी का, लेप्रोसी का, उन पे एक निशान लगा दिया जाता था ताकि वो जहां जहां जाएं लोगों को पता चल सके कि इनको क्या प्रॉब्लम है, कोढ़ की बीमारी है। हिस्कियल 9 बाब उसकी 4 आयत में भी हम देखते हैं कि खुदावंद का फरिश्ता आया और उसने लोगों पे, वो लोग जो दुआ करने वाले हैं, शिफायत करने वाले हैं, खुदा के लोग हैं, उन पे एक निशान लगा दिया। मुकाशवा 14 बाब में भी आप देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों पर एक निशान लगाया, और इसी सीक्वेंस को या इसी सिस्टम को हम मुखालफ मसीह को भी इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। न्यू टेस्टमेंट में ये जो छाप या निशान का जो वर्ड है ये सिर्फ मुकाशवी किताब में आया है, और 7 टाइम्स 7 मुख्तलिफ वर्सेस में इसका जिक्र किया गया है, हैवान की छाप, हैवान का निशान। और ये उसी एक प्रोसेस का कंटिन्यूएशन हमें नजर आती है जो ओल्ड टेस्टमेंट में भी, जिसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर मुकाबियों के दौर में मिस्र का जो हाकम था वो उन तमाम ज्यूस पे निशान लगा देता था जो इस बात के लिए विलिंग हो गए थे कि वो उनकी जो गॉड्स हैं उनकी वर्शिप के लिए वो विलिंग है। तो तीसरा मुकाबी जो किताब है मुकाबियों की, और 2 बाब उसकी 29वीं आयत में आपको ये रेफरेंस मिल सकता है। और ये जो मार्क 4 गमा जो इसका ग्रीक वर्ड है स्टिग्मा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, एग्जैक्टली ये जो वर्ड था रोमन दौर में इसलिए यूज होता था कि जब रोमन जो बादशाह थे, एम्परर थे, उनका नाम या उनकी तस्वीर, शबी सिक्कों पे जब लगा दी जाती थी या लगाई जाती थी कॉइन्स के ऊपर, जैसे आपके कॉइन्स के ऊपर कायदे आजम की या किसी और शख्स की तस्वीर हो सकती है या इमेज हो सकती है। सो रोमन टाइम्स में जब जो रोमन एम्परर्स थे उनका नाम या उनकी इमेज कॉइन्स के ऊपर امپرنٹ کی جاتی تھی، اس کو اس زمانے میں چھاپ یا نشان یا سٹگما یا چارگما کہتے تھے. سیم وہی ورڈ جو مخالف مسیح کے لیے اور اس کے سارے اس پروسیس کے لیے جان نے مکاشفہ 13 باب میں استعمال کیا ہے. اس سے ریلیٹڈ بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ جو ورڈ ہے یا پروسیس ہے یہ کوائنز کے اوپر کرنسی لین دین خرید و فروخت کے تعلق سے یہ یوز ہوتا تھا. تو مخالف مسیح بھی اسی کیپیسٹی میں اس کو اپنے کام کے لیے اور اپنے پرپس کے لیے یوز کرے گا. سو مکاشفہ 7 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 144,000 کا ذکر ہے تو ان کے اوپر بھی یا ان کے تعلق سے بھی ہم سیل کرنے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں. سو اس وقت چرچ کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ جو شخص نشان نہیں لے گا وہ خرید و فروخت نہیں کر سکے. یہ نشان کیا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. لیکن پرابلم کیا ہوگی، اکنامک پرابلم ہوگی، خرید و فروخت نہیں کر سکتا، مے بی اس کو جاب نہیں مل سکتی ہے، مے بی اگر وہ چھاپ یا نمبر یا آئیڈینٹیفیکیشن اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی طرح کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا ہے، مے بی وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کو پروسیس نہیں کر سکتا ہے، مے بی اس کا اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ فنکشن نہیں کرے گا یا افیکٹو نہیں ہوگا. اٹ کین بی اینی تھنگ. بٹ آن دا ادر ہینڈ دوسری پرابلم یہ ہے، اگر وہ لے لیتے، اگر چرچ، اگر ایماندار، اگر مسیحی لوگ وہ نشان لے لیتے ہیں یا ان کو لینا پڑے، دس مینس ان کو اپنی نجات جو ہے وہ کھونی پڑے گی، درمیان کا جو ہے وہ کوئی رستہ نہیں ہوگا. اسی لیے یہ بڑی مصیبت کا دور ہے اور پھر خداوند آنے میں جلدی کریں گے جب چرچ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا. آج آپ کے لیے ایمان رکھنا ایزی ہے، آج آپ کے لیے چرچ میں جانا ایزی ہے، آج آپ کے لیے بائبل پڑھنا اور بائبل اپنے پاس رکھنا کئی اور ملکوں کی نسبت پاکستان میں ایزی ہے، سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن ہم سست پڑ گئے ہیں. اس وقت ایک بڑی قیمت دینی پڑے گی چرچ کو، ایمانداروں کو، کلیسیا کو، مسیحی ہونے کے لیے ایک بڑی قیمت دینی پڑے گی. اور اگر وہ اس سائن کو، اس عدد کو نہیں لیں گے تو ان کا اکنامک ڈیزاسٹر ہو جائے گا، اگر وہ اس کو لے لیتے ہیں تو اس کی پرابلم کیا ہو جائے گی، ان کا ایٹرنل ڈیزاسٹر ہو جائے گا، اپنی نجات کو، اپنی ابدی زندگی کو وہ ہمیشہ کے لیے لوس کر دیں گے اور دوبارہ نجات پانے کے لیے ان کے پاس کوئی رستہ نہیں رہ جائے گا. میں پچھلے دنوں میں دعا کر رہا تھا، خداوند سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کے چرچ اتنے فیلئر میں سے کیوں گزر رہے ہیں، ہم اتنی سوئی ہوئی حالت میں سے کیوں گزر رہے ہیں، چرچ اتنا مرا ہوا کیوں ہے، چرچ اتنا ناکام کیوں ہے. سو دا اسپرٹ آف دا لارڈ سیڈ جب ناکام لوگ خدمت میں آئیں گے تو وہ چرچ کو ناکام بنا دیں گے. جب چرچ میں فیلئر لیڈرشپ ہوگی، مورل فیلئر، اخلاقی طور پر جب فیل لوگ چرچ میں آئیں گے، روحانی طور پر جب فیل لیڈرشپ ہوگی، اخلاقی طور پر، مالی طور پر، مینٹلی جب فیلئر لیڈرشپ چرچ میں کھڑی ہوگی، اس چرچ کا انجام کیا ہوگا، ناکامی، فیلئر. اور لوگوں کا رزلٹ کیا ہوگا، بیچاروں کا، جیسے جیسے چرواہ ہوگا ویسے اس کی بھیڑے ہوں گی. دا کانگریگیشن، دا پیپل ول بی موونگ ان ٹو اٹر فیلئر. سو دعا کریں چرچ کی لیڈرشپ میں ایسے لوگ کھڑے ہوں جن کے اندر خدا کی انرجی، خدا کا سٹگما، خدا کی سٹرینتھ، خدا کی غیرت، जो खुदा के लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए वो विलिंग ना हो, खड़े हो सके, तैयार रह सके। जब बेदार लीडर चर्च में खड़े होते हैं तो चर्च में बेदारी आती है, वो चर्च बेदार होते हैं। दे नो देयर लिमिट्स, दे नो देयर डेस्टिनी, दे नो देयर असाइनमेंट्स, दे नो देयर मिशन, दे नो देयर कॉलिंग, दे अंडरस्टैंड देयर गिविंग्स, दे आर प्रेइंग पीपल। लेकिन जब डेड लीडरशिप आती है तो चर्च किस हालत में चला जाता है? डेड चर्च। सो बड़े उस दौर में आप अपने आप को भी अवेयर रखें और किसी और को भी बताते रहें, निशान नहीं लेना है। डोंट टेक द साइन, डोंट टेक दैट इमेज। निशान जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं, यहां पे हमें बताया गया। 17वीं आयत में लिखा था कि उसके सिवा जिस पर निशान, यानी उस हैवान का नाम, दो चीजें हो सकती हैं, हैवान का नाम और उसका अदद, दो चीजें, या उसका नाम या उसका अदद। अदद मीन्स अ नंबर, नेम्स हैव ऑल्सो नंबर्स। हर नाम के इल्म उल अदाद के हिसाब से नामों के भी अदद निकलते हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग एंड बिब्लिकली स्पीकिंग, जब हमने 666 के नाम को कैलकुलेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मेथड है कि उसके ग्रीक नाम को कैलकुलेट किया जाए। ये नहीं उर्दू में मीम के इतने अदद हैं, नून का इतना अदद है, फलां का इतना अदद है, आप जमा करें तो 666 बन जाएगा। या इंग्लिश अल्फाबेट, ए के इतने नंबर्स हैं, बी के इतने हैं, डी के इतने हैं, आप जमा करें तो वो क्या बन जाता है? 666। नॉट नॉट विद एंटी क्राइस्ट। अगर किसी ने कैलकुलेशन करनी है तो वो किसके मुताबिक करनी है? ग्रीक अल्फाबेट्स के मुताबिक। आज हमने आपके लिए कुछ तस्वीरें प्रोवाइड की हैं, 12 पेजेस हैं, जिनमें एक चार्ट मौजूद है, एक पोप की लिस्ट मौजूद है, एक चार्ट मौजूद है ग्रीक में, अल्फा बीटा जो भी गामा थीटा उनके अल्फाबेट्स हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जो भी कैलकुलेशन होनी है वो ग्रीक नेम से होनी है, उर्दू के या इंग्लिश के। हिटलर का भी लोग निकाल लेते हैं, 666 इसका नंबर निकलता है। सो दो चीजें होंगी, या उसका नाम या उसके नाम का अदद। इट कैन बी बोथ, इट कैन बी एनी ऑफ देम। हो सकता है कई जगहों पे वो अपने नाम को यूज करे, कई जगहों पे वो अपने अदद को यूज करें। अदद यूज करना ज्यादा फिजिबल है, और इस वक्त जो मैथमेटिशियंस हैं वो हमें ये बताते हैं कि इस वक्त जो दुनिया की आबादी है, अगर हर एक को एक इंटरनेशनल ग्लोबल, जिसे कहा जा रहा है ग्लोबल आईडी नंबर, अगर दिया जाए, लेटेस्ट जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, वो क्या हो रही है, उसका नाम क्या है और उसमें कैलकुलेशन कैसे होती है। लेकिन जो पिछले, ये अभी 10 साल पुरानी बातें हैं, कि अगर हर एक को एक पर्सनल आईडी नंबर दिया जाए और अगर वो नंबर 18 डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा तो वो किसी एक के लिए भी वो रिपीट नहीं होगा। एवरीबॉडी कैन गेट इट्स ओन इंटरनेशनल आईडी नंबर डिजिट्स पर 18, और 666 का एक मतलब क्या हो सकता है? 18 भी हो सकता है। कैसे? 6+6 बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? हाँ जी, एक उसका एक इंटरप्रिटेशन 18 भी हो सकते हैं, 18 डिजिट्स भी हो सकते हैं। एक इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये हो सकती है कि उस बंदे के 3 नाम होंगे, कईयों के 2 नाम होते, कईयों के 3 होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, फैमिली नेम आ जाता है। उसके हर नाम का जो नीचे अदद निकलेगा, उसका जो जब जमा किया जाएगा तो वो क्या होगा? 666। अब 17वीं आयत तक जो पीछे का चैप्टर है, यूहन्ना रसूल रोया देख रहे हैं, विजन देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, हैवान है, बुद्ध है, इख्तियार है, झूठा नबी है, छाप है, ये सारा प्रोसेस है। लेकिन 17वीं आयत में वो यहां पर रुक के तो हमें उसकी वजाहत देते हैं, इंटरप्रिटेशन देते हैं, हिकमत का ये मौका है। 18वीं आयत में जो समझ रखता है वो उस हैवान का, ये अब रोया में नहीं देख रहे, ये अब हमें बता रहे हैं, चर्च को बता रहे हैं। ही इज टेलिंग अस विजडम, विजडम टू कैलकुलेट, नंबर को कैलकुलेट कर लो। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग की बात है वो ये है कि जो 666 का नंबर है इसमें कोई खराबी नहीं है, आपकी गाड़ी के नंबर में भी आ सकता है, आपके टेलीफोन नंबर में भी आ सकता है, आपके किसी और नंबर में, नंबर में कोई मसला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब तक मुखालफ मसीह आ नहीं जाता है उस वक्त तक नंबर या नाम कंसील्ड है, रिवील्ड नहीं है, पहले से नहीं आप कह सकते हैं। इसका ये 666 बनता है, फॉर प्रिंस चार्ल्स का 666 नंबर बनता है, और बहुत से लोग हैं। ये जो पुरानी मैंने स्टडीज दी 10 साल पहले, उनमें हमने बड़ी डिटेल में मैंने ये सारी बातें उस वक्त भी बताई थी, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि वो मुखालफ मसीह है। जब तक कोई भी शख्स इस पोजीशन में नहीं आ जाएगा, इस सीट पे नहीं आ जाएगा कि बिब्लिकल जो हैवान का टाइटल है उसको मिल जाए, उस वक्त तक ये नंबर जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता है, ना ही आप करने की कोशिश करें और ना ही आप इसकी जुस्तजू करें। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज उस आदमी का आदत, वो आदमी का आदत है, एंड यू ऑल नो कि जो इंसान का आदत है वो क्या है, 6। नंबर 1 यूनिटी को पेश करता है, 1नेस को, 2 टेस्टमनी को, 3 ट्रिनिटी को, 4 दुनिया को, 5 फेथ को, 6 इंसान को, 7 जिंदगी को, 8 क्राइस्ट को, 9 फाइनलिटी को, और 12 शागिर्दियत को, 10 किंगडम को। इसलिए 10 कुंवारियों की जो 10 की तमसीलें हैं वो किंगडम पैराबल्स हैं, 11 विटनेस को, 12 खुदा की किंगडम को, 13 सटैनिक, और इस तरह से कई दफा आपको पहले बताए नंबरों के जो अदद हैं, 39 वर्ड ऑफ गॉड, 40 टेस्टिंग पीरियड, 70 एज लिमिट, एज पीरियड, और इस तरह से ये जो इनके अपने अदद जो है हिब्रू लोगों ने डेवलप किए, या जिनकी ओल्ड टेस्टमेंट में हमें वैल्यू या इस्तेमाल नजर आता है, तो इसमें 18वीं आयत में जो हमें बताता है उसका अदद 666 है। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है जैसे हम कहते हैं 666 666, और लेकिन इसका एक और मतलब भी हो सकता है 600 6 लैदा 100 अलग और 66, यानी दिस मींस एक 18 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। दिस मींस को उसके पूरे नाम का जो ग्रीक में उसका नाम होगा उसकी जमा सारे उसके उसके नामों की क्या हो सकती है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी उसके नाम है, 666 टोटल हो सकता है। इसका तीसरा मतलब यह भी हो सकता है कि उसके 3 नाम होंगे और हर नाम का जो जमा है वो 6 होगा, और इसका यह भी मतलब हो सकता है कि उसके 3 नाम होंगे, एक नाम का जो टोटल है वो 6, दूसरे का 100 और तीसरे का 66, इस तरह से भी हो सकता है। सो अब जबकि इसमें क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि किस सीक्वेंस में, किस कॉम्बिनेशन में इस नाम को यूज किया जाएगा, सो चर्च को, बाइबल स्टूडेंट्स को हर ऑप्शन के लिए अपने आप को ओपन रखने की जरूरत है। यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मुखालफ मसीह के दौर में वो नाम, वो अदद, वो स्टिग्मा, वो निशान, वो आईडी नंबर किसी चर्च के बंदे ने नहीं लेना है। अभी आप ले लें कोई बात नहीं, अभी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। कोई नंबर आपको मिलता है, ये आपका जी आईडी नंबर है, ये फलान नंबर है, ये नंबर है, इंटरनेशनल नंबर है, फलान चीज है, लेकिन चिप नहीं लगवानी है आपने। आंखों में लेंस लगवा लें बेशक, लेकिन हाथों पे या माथे पे चिप नहीं लगवानी, इससे बचना है आपने। बाद में फिर सर्जरी करा के हम निकालते फिरेंगे, उसको मसला हो सके। जब तक मुखालफ मसीह जाहिर नहीं होता है, किसी नाम का, किसी अदद का, किसी इस चीज का नुकसान नहीं है। वरना बाद में आपके जी पास्टर साहब ने कहा आपने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाने, उस पर एक नंबर होता है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमने बनवाने हैं कार्ड अपने आईडी। बट प्रॉब्लम किस वक्त होगी? उस वक्त होगी। तो अभी आपने जो चीज अवॉइड करनी है कि कोई ऐसे बायोचिप जो है वो आपकी बॉडी में प्लांट ना हो। आई एम हवाला पढ़े मुकाशवा 14:9।
फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले,
वो, 10वीं और 11वीं आयत भी,
वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुबतला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान पर और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा।
हाँ जी, 13वीं आयत तक।
मकदसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सबर का यही मौका है।
तो दिस मीन्स, देखिए 12वीं हमें बता रही है द चर्च इज ओवर हियर। चर्च जमीन पर मौजूद है, मुकद्दस जमीन पर मौजूद है। छाप भी लगाई जा रही है, आदत भी चल रहा है, कत्ल भी हो रहे हैं, फलां चीजें भी हैं। तीसरे फरिश्ते ने अपना प्याला उंडेला और उसने कहा मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के लिए सबर का यही मौका है, वक्त है। ट्रिबुलेशन का दौर, मुखालफ मसीह का दौर, जो मसीह पर ईमान रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं उनके लिए क्या मौका होगा? सबर का और दुआ का मौका। देयर विल बी ग्रेट ट्रिबुलेशन। एक तरफ से दुनिया मरेगी, जलजले, काल, वबाएं, हलाकतें, बीमारियां, तबाहियां, और सेकंड साइड पे दुनिया को मारा जा रहा होगा फॉल्स झूठा नबी और हैवान मिलकर ये काम कर रहे होंगे। लेकिन मुकद्दसों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के लिए लिखा है कि सबर का यही मौका है, कायम रहने का यही मौका है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनशैटरिंग बुलडॉग फेथ रखने का यही मौका है कि आपने उस वक्त, आपने वो थोड़ा ही वक्त होगा बगजीतों की खातर, वो दिन मे बी इट्स 6 मंथ्स, इट्स 1 ईयर, यह हमें नहीं बताया गया। टोटल जो है वो 3.5 साल हैं, लेकिन मुकद्दसों की खातिर वो दिन कम कर दिए जाएंगे 3.5 से। अब कितने काम किए जाएंगे ये बाइबल ने नहीं बताया। इसका मतलब है ये डिपेंड करता है मुकद्दसों की दुआओं पर। अभी आज से ही चर्च ये दुआ करना शुरू कर दे कि जो मुसीबतों के दिन है, ट्रिबुलेशन का पीरियड है, चर्च के लिए कम से कम हो, हमारे लिए कम से कम हो। मुसीबतों का दौर, 13वीं आयत।
फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके एमाल उनके साथ साथ होते हैं।
आमीन। सो मुकाशवे किताब बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है अगर हम इसके प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर सकें। आए पढ़े 16वां बाब उसकी 2री आयत।
बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की प्रस्तिश करते थे उनके एक और एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया।
सो एंटी क्राइस्ट में भी इसलिए लोगों से कहेगा आप छाप ले लें, कोई मैं आपको कोई रास्ता मिल जाएगा, मे बी कोई इकोनॉमिक हेल्प आपको मिल जाएगी, मे बी आप सरवाइव कर सकेंगे। लेकिन खुदा यहां पे आपने लोगों की इनकरेज कर रहे हैं, आप वो छाप ना लें। खुदा वैसे ही जमीन पर आफतें वबाएं नाजल फरमाएगा जैसे मूसा के दौर में मिस्र पर और फिराउन में, फिराउन के महल में या फिराउन के पीरियड में खुदा ने अपनी उस कहर को उंडेला। और लिखा है बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उंडेल दिया और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी वो लोग जिन्होंने छाप ले ली कि उन मौजे ही मौजा वो बांधो जन गया मौज छाप ले ली और उस बुत की प्रस्तिश करते थे। बुत की प्रस्तिश जो है दो मेन रिलीजन्स में होती है, हिंदुइज्म और कैथोलिसिज्म में। सो आप समझ सकते हैं कि बाइबल का इशारा किस तरफ है। जो उस बुत की प्रस्तिश करते थे उनके एक बड़ा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया, बॉयल्स बर्निंग्स नासूर, मे बी स्किन डिजीजेस ट्यूमर्स अंदर बाहर, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन विद द पीपल। सो बाइबल इज वेरी क्लियर ओवर हियर, हर वो शख्स जो इस छाप को ले लेगा, जो इस अदद को ले लेगा, जो इस निशान को लेगा, जब प्यालों की जजमेंट का वक्त आएगा, गजब के प्याले जब उंडेले जाएंगे, तो सबसे पहला किस पे उंडेला जाएगा? वो लोग जिन्होंने इस छाप को लिया था। इसका मतलब यह है कि जब ये प्याला उंडेला जाएगा कलीसिया की जान बच जाएगी, वो तो अपनी मुसीबत ही फड़े जाएंगे, मौजा मौजा बंद ते बीमारियां बीमारियां शुरू, पहले भी बड़ी मुसीबतें होंगी। लेकिन चूंकि वो खुदा के लोगों को कलीसिया को मुकदसों को कत्ल करवाएंगे, शहीद करेंगे और मार्टरडम होगा, खुदावंद अपने कहर और गजब के प्यालों को उंडेलेगा, उनका हाथ बजाय इसके कि वो चर्च की तरफ बढ़े वो अपनी बीमारियों की फिक्र में पड़ जाएंगे, वो अपनी तकलीफों में का शिकार हो जाएंगे। काशवा 19वां बाब और उसकी 20वीं आयत।
और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे।
एक वक्त आएगा दुश्मन पकड़ा जाएगा, वो वक्त है, वो वक्त आएगा, बाइबल बताती है, जब कलीसिया को सताने वाले और मुखालफे मसीह और गुमराह करने वाले पकड़े जाएंगे। हाँ जी,
जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था, वो दोनों आके उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है।
जहन्नम में नहीं डाले जाएंगे बल्कि आग की झील में डाले जाएंगे, झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। हाँ जी, 21वीं आयत।
और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए और सब परिंदे उनके गोश्त से सेर हो गए।
सो तीन तीन बड़े डिजास्टर्स को हम देखेंगे इस ट्रिब्यूलेशन दौर में। नंबर वन, एक तरफ दुनिया नेचुरल डिजास्टर से हलाक हो रही हो, दूसरी तरफ दुनिया मुखालफे मसीह और झूठे नबी के इस सारे काम से या उसकी जो तबाहकारियां हैं उससे हलाक हो रही होगी। और नंबर थ्री बताया जाता है हमें जो मगीडो की वार होगी, हर मजदून की जंग होगी, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल विल बी किल्ड ओवर देयर, दे विल डाई ओवर देयर। जब इसको मगीडो की वादी को मेजर किया जाता है तो उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो लेंथ है, इट्स अराउंड 200 किलोमीटर्स। और कहा जाता है ये इतना एरिया से लाहौर से सरगोधा सफर है, मिसाल के तौर पर एक बड़ा, एक इस कदर बड़ा एरिया होगा। और वहां पे लिखा है उस वादी में इस कदर इंसानों का खून बहाया जाएगा, उस खून की हाइट कितनी होगी वहां पे लिखा है घोड़े की पीठ तक। दिस मीन्स सम 3-4 फीट, घोड़ा जितना भी ऊंचा होता है। और ये जो पैलेस्टाइन के घोड़ों की बात हो रही, दे आर क्वाइट हाई, बड़े साइज के होते हैं, अरेबियन हॉर्सेज और जो पैलेस्टाइनियन हॉर्सेज हैं दे आर क्वाइट हाई, सो वॉट एवर द हाइट इस कदर लहू वहां पे बहाया जाएगा। मेरे ख्याल जब यीशु मसीह के आने का वक्त होगा तो शायद 1-2 हजार लोग ही बचेंगे दुनिया में। सो द पॉइंट इज तबाही, केओस, कंफ्यूजन, मर्डर, किलिंग, बीमारियां, बुरे दिन। सो दुआ करते रहें खुदावंद आने वाले दिनों से हमें बचाकर महफूज रख, स्पेशली जब हमें अगर गुजरना पड़े, हो सकता आपको ना गुजरना पड़े, इससे पहले खुदावंद आपको हेडक्वार्टर बुला लें, लेकिन अगर गुजरना पड़ता है तो ये दिन कटा दिए जाएं, मुकदसों की खातर कटा दिए जाएं। आखिरी वाला पढ़ेंगे 20:4।
फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे।
हालेलुया। नहीं, आप बादशाह होने के लिए बुलाए गए हैं, झुकना नहीं है, अभी भी दुनिया में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपने ईमान के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी जगह पे झुकना नहीं है। हालेलुया।
Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलमे अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। Grace Assemblies of Pakistan रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, मतनी शिफा और आलमगीर क्लीसिया को बिलअमूम और क्लीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाजन और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ जराए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और खतो खताबत के जरिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे रابطہ कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318, लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान।